ये आकाशवाणी दिल्ली है। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए आज बैठक की। दिल्ली सरकार बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना शुरू करेगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किसानों को कीटनाशकों के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए किसान कवच सूट जारी किया। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, सरकार ने बुनियादी ढांचे, आर्थिक और कृषि क्षेत्र, सांस्कृतिक विकास तथा एकता पर विशेष ध्यान दिया है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने द्वारका में गोल्फ कोर्स का उद्घाटन किया और साहित्य अकादमी पुरस्कारों की नई दिल्ली में घोषणा। पुरस्कारों के लिए 21 भाषाओं की रचनाओं को चुना गया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए आज एक बैठक की। बैठक की अध्यक्षता मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने की। इसमें निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू भी शामिल हुए। 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल अगले वर्ष 23 फरवरी को समाप्त होगा। चुनावों की घोषणा से पहले ही सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने सभी विधानसभा सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने चुनाव के लिए 21 उम्मीदवारों की घोषणा की है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कल राज्यसभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर दिए गए बयान पर आज आम आदमी पार्टी ने भाजपा मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, राज्यसभा सांसद संजय सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और मंत्री सौरभ भारद्वाज समेत कई अन्य नेता शामिल हुए। श्री केजरीवाल ने आरोप लगाया कि श्री शाह के बयान से लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। वहीं दिल्ली भाजपा ने आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं के आरोपों को झूठा बताया। दिल्ली भाजपा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गृहमंत्री के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी लोगों को गुमराह करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली सरकार पर नकली जाति प्रमाण पत्र के आधार पर अनुसूचित जाति को मिलने वाले आरक्षण का लाभ गैर पात्र लोगों को देने का आरोप लगाया है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली सरकार में विधायकों ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर हजारों फर्जी दस्तावेज बनवाए हैं। उन्होंने कहा कि इनसे संदिग्ध व्यक्तियों को लाभ पहुंचाया गया है। श्री सचदेवा ने उपराज्यपाल से इस मामले की तुरंत केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI से जांच कराने की मांग की है।
2022 और 23 के सारे केसेस हैं। जानकारी मिली कि उस समय जो वहाँ के विधायक हैं के ऑफिस में सरकारी आधार कार्ड बनाने की मशीनें रखी गई थी, वहाँ से आधार कार्ड बनाए जाते थे। हमने लोकसभा चुनाव के बाद जब शिकायत की तो वो आधार कार्ड की मशीनें तो वहाँ से हट गई, लेकिन उन दिनों में जो दस्तावेज बने हैं वो चुकाने वाले हैं। वैसे तो हमने 8 केसेस पकड़े हैं अभी, लेकिन हजारों केसेस ऐसे हैं जो हमारी निगाह में हैं।
आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना शुरू की जाएगी। श्री केजरीवाल ने कहा कि 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को इस योजना का लाभ मिलेगा। श्री केजरीवाल ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत दिल्ली के सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में बुजुर्गों का इलाज मुफ्त में किया जाएगा।
आज दिल्ली के बुजुर्गों के लिए मैं संजीवनी योजना का ऐलान करने जा रहा हूं कि 60 साल से ऊपर के हमारे जितने बुजुर्ग हैं उन बुजुर्गों का पूरा इलाज फ्री करवाया जाएगा। इसमें कोई BPL, APL, TPL, RPL कोई लिमिट नहीं होगी, सबका इलाज मुफ्त कराया जाएगा। आपका बीमारी पे खर्चा आएगा उसका सारा खर्चा दिल्ली सरकार वहन करेगी और इसके लिए रजिस्ट्रेशन 2-3 दिन में चालू हो जाएगा।
दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी की इस योजना को केवल चुनावी प्रचार बताया। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों के इलाज का मुद्दा हमेशा से भाजपा के लिए चिंता का विषय रहा है, लेकिन दिल्ली सरकार ने इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी चुनाव को देखते हुए इस तरह के वादे कर रही है। साहित्य अकादमी ने आज नई दिल्ली में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 की घोषणा की। हमारे संवाददाता ने बताया कि अकादमी ने इन पुरस्कारों के लिए कुल 21 भाषाओं की रचनाओं को चयनित किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि बांग्ला, डोगरी और उर्दू भाषा में पुरस्कार की घोषणा बाद में की जाएगी।
साहित्य अकादमी ने जिन रचनाओं को पुरस्कार के लिए चयनित किया है उनमें 8 कविता संग्रह, 3 उपन्यास, 2 कहानी संग्रह, 3 निबंध, 3 साहित्यिक आलोचना, 1 नाटक और 1 शोध पुस्तक शामिल है। हिंदी की जानी मानी लेखिका गगन गिल का उनके प्रसिद्ध कविता संग्रह मैं जब तक आई बहार के लिए चयन हुआ है। वहीं अंग्रेजी भाषा में लेखिका स्ट्रिन किरे को उनके उपन्यास स्प्रिट नाइट्स के लिए चयनित किया गया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में साहित्य अकादमी के सचिव के श्रीनिवास राव ने बताया कि नायक समिति ने हर भाषा की उत्कृष्ट रचनाओं का चयन किया है।
आज घोषणा हुई 21 भाषाओं का, उर्दू, डोगरी और बंगाली में आज नहीं हो पाया। इसका तो जो चयन प्रक्रिया का, जैसा है कि 2 एक्सपर्ट से पहला ग्राउंड लिस्ट बनाया जाता है, उसके बाद एडवाइजरी बोर्ड के सजेशन लिया जाता है, उसके बाद प्रिलिमिनरी पैनल के सजेशन लिया जाता है, फिर फाइनली जो प्रिलिमिनरी ने जो सजेस्ट किया वो जूरी में जाती है और जूरी का 3 मेंबर जूरी ने उस टोटल आया हुआ किताबों से कौन सी उत्कृष्ट किताब है, चाहे वो कहानी संग्रह हो, कविता संग्रह हो, या ऐसे कलेक्शन हो, या मेमोयर हो, रिसर्च हो, नॉवेल हो, प्रक्रिया इस तरह का है।
साहित्य अकादमी द्वारा अगले वर्ष 8 मार्च को सभी चयनित लेखकों को 1,00,000 रुपए की नगद राशि के साथ साथ अन्य सम्मान सामग्री से सम्मानित किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार के लिए अक्षित वैद्यान।
हिंदी के लिए वर्ष 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार जानी मानी लेखिका गगन गिल को कविता संग्रह मैं जब तक आई बाहर के लिए दिया जाएगा। नई दिल्ली में साहित्य अकादमी के सचिव श्रीनिवास राव ने बताया कि अंग्रेजी समेत सभी 21 भाषाओं के लेखकों को अगले वर्ष 8 मार्च को 1,00,000 रुपए की नकद राशि और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आज द्वारका में 158 एकड़ में फैले द्वारका गोल्फ कोर्स का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस गोल्फ कोर्स के उद्घाटन से दिल्ली की हरियाली में वृद्धि के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया अभियान को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री सक्सेना ने दिल्ली विकास प्राधिकरण को बधाई देते हुए कहा कि द्वारका गोल्फ कोर्स में क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, जिम और रेस्टोरेंट जैसी सुविधाओं के साथ साथ भारत के उभरते गोल्फ खिलाड़ियों को तैयार करने में सहायता मिलेगी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज बाबरपुर में नवनिर्मित पॉली क्लिनिक का उद्घाटन किया। इस पॉली क्लिनिक के अंतर्गत एलोपैथिक, यूनानी और आयुर्वेदिक उपचार की निशुल्क सुविधाएं दी जाएंगी। श्री राय ने कहा कि ये पॉली क्लिनिक दिल्ली सरकार की त्रिस्तरीय स्वास्थ्य प्रणाली का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य अधिक से अधिक पॉली क्लिनिक खोलकर नागरिकों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। ये पॉली क्लिनिक गुरु तेग बहादुर अस्पताल के अंतर्गत सवेरे 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक संचालित की जाएंगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किसानों को कीटनाशकों के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए विशेष रूप से तैयार किसान कवच सूट जारी किया है। डॉक्टर सिंह ने कल नई दिल्ली में कहा कि कीटनाशक रोधी ये सूट किसानों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय है।
अभी तक हम एक्सपोजर होने के बाद का इलाज करते थे, अब ये प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का इलाज होने लगा, स्पेसिफिकली टारगेटिंग द फार्मर कम्युनिटी के किसान। और इसकी ये खूबी है कि ये वॉशेबल है, 150 बार धोया जाता है। इसके अलावा इसकी मिनिमम लाइफ स्पैन 2 बरस है, उससे ज्यादा भी चल सकता है।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर धातु के दुर्घटनारोधी बैरियर लगाने के लिए दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए ठेकेदारों को निर्देश दिए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि दिशा निर्देशों के अनुसार क्रैश टेस्ट रिपोर्ट के अनुरूप सामग्री की आपूर्ति ठेकेदारों द्वारा सुनिश्चित की जानी चाहिए। इन बैरियर को निर्माताओं द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुरूप स्थापित किया जाना चाहिए। ठेकेदार को निर्धारित डिजाइन मानकों और विशिष्टताओं के अनुसार लगाए गए दुर्घटनारोधी बैरियर के लिए निर्माताओं से प्रमाण पत्र भी प्राप्त करना होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी अगले वर्ष से केवल शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए परीक्षा आयोजित करेगी, भर्ती परीक्षाएं नहीं। श्री प्रधान ने कहा कि त्रुटि मुक्त परीक्षा संचालित करने और जवाबदेही तय करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि केंद्र सरकार ने पिछले 10 वर्षों में अल्पसंख्यकों सहित गरीबों के जीवन को ऊपर उठाया है। नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग के 20वें स्थापना दिवस पर श्री प्रधान ने कहा कि सरकार अपने आदर्श वाक्य सबका साथ सबका विश्वास पर चलती रही है।
जब हम कहते हैं हमारी सरकार सबके लिए उत्तरदायी है, सबको साथ लेके चलने वाला है, सबका विकास की हमारी प्राथमिकता है, इसमें भारत की जो सामाजिक और सहज वर्गीकरण है वो धार्मिक आधार पे हो, सभी लोग एक छत के नीचे हमारी विकास हो, इसीलिए इस सामूहिक प्रयास के कारण भारत पिछले 10 साल में आज विश्व की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बनी। हमारी मानव सूचक कई मायने में आज विश्व में एक आदर्श की स्थिति तक पहुंची है।
दिल्ली मेट्रो की जहांगीरपुरी से समयपुर बादली मार्ग पर मेट्रो की सेवाएं अगले 10 दिन तक प्रभावित रहेंगी। डीएमआरसी के अनुसार आज से लेकर 28-29 दिसंबर तक जहांगीरपुरी और समयपुर बादली स्टेशनों के बीच मेट्रो सेवाएं रात 10:45 के बाद सवेरे 7:02 तक बंद रहेंगी। इस दौरान समयपुर बादली रोहिणी सेक्टर 18-19 और हैदरपुर बादली मोड़ स्टेशन बंद रहेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि सरकार ने बुनियादी ढांचे, आर्थिक और कृषि क्षेत्र तथा सांस्कृतिक विकास और एकता पर विशेष ध्यान दिया है। नई दिल्ली में आज मीडिया को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि देश की भाषाएं राष्ट्र की एकता और सांस्कृतिक इतिहास का महत्वपूर्ण आधार हैं। श्री रेड्डी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 3 भाषाओं से संबंधित प्रारूप की प्रशंसा की।
2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने 3 लैंग्वेजेस फार्मूला को उस सिस्टम को और फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए प्रयास किया है, यानी अभी 3 भाषाओं से कम 2 भारत की स्थानीय भाषा एजुकेशन पॉलिसी 2020 में और रीजनल लैंग्वेजेस को जोड़ दिया गया। इससे गांव में रहने वाले गरीब सामान्य सभी लोगों को एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में रीजनल लैंग्वेजेस को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया।
एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना में 30 प्रतिष्ठित प्रकाशकों की 13,000 से अधिक शोध पत्रिकाओं को शामिल किया गया है। इस योजना की शुरुआत शिक्षा मंत्रालय ने शोध पत्रिकाओं की देशव्यापी पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की थी। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा शोध और विकास संस्थानों के अंतर्गत सभी उच्च शैक्षणिक संस्थान वर्ष 2027 तक इन शोध पत्रिकाओं को मंगवाने की सुविधा ले सकते हैं। शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने आज राज्यसभा में बताया कि एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना के अंतर्गत इन शोध पत्रिकाओं की सदस्यता के लिए करीब 6,000 करोड़ रूपए आवंटित किए गए हैं। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कल तक 19,21,000 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष कर संग्रह किया है। ये कर संग्रह पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 20% अधिक है। इसमें 9,24,000 करोड़ रुपए से अधिक के निगमित कर और 9,53,000 करोड़ रुपए के गैर निगमित कर शामिल हैं। आयकर विभाग ने कल तक 3,38,000 करोड़ रुपए से अधिक के रिफंड भी जारी किए हैं। भारत स्मार्टफोन निर्यात करने वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। वर्ष 2019 में ये 23वें स्थान पर था। कंपनियों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों और उद्योग संघों से एकत्र आंकड़ों के अनुसार नवंबर 2024 में देश के स्मार्टफोन निर्यात में मात्र एक महीने में 20,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक समाचार लेख साझा करते हुए इस उपलब्धि की सराहना की और इसे मेकिंग भारत स्टोरी करार दिया। दिल्ली में ठंड महसूस की जा रही है, हालांकि दोपहर के समय हल्की धूप खिलने से मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली और आसपास के इलाकों में सवेरे और रात के समय घना कोहरा छाए रहने और शीतलहर चलने का अनुमान है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 23 डिग्री और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। दिल्ली और एनसीआर में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। आज शाम 7 बजे औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 448 दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार शहर के कुछ हिस्सों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 450 को पार कर गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए आज बैठक की। दिल्ली सरकार बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना शुरू करेगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने किसानों को कीटनाशकों के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए किसान कवच सूट जारी किया। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, सरकार ने बुनियादी ढांचे, आर्थिक और कृषि क्षेत्र, सांस्कृतिक विकास तथा एकता पर विशेष ध्यान दिया। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने द्वारका में गोल्फ कोर्स का उद्घाटन किया और साहित्य अकादमी पुरस्कारों की नई दिल्ली में घोषणा। पुरस्कारों के लिए 21 भाषाओं की रचनाओं को चुना गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।